एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस गहन चर्चा में। मैं हूँ आपकी पहली मेजबान
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ इतिहास पर बल्कि हमारे आज पर भी मुझे लगता है काफी गहरी छाप छोड़ी है।
हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं फ्रांस फैनन के कालजयी रचना द रैचेड ऑफ द अर्थ। ये किताब देखिए सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है बल्कि विचारों का एक तरह का ज्वालामुखी है। बहुत विचारोत्तेजक, तीखी और हाँ कई बार असहज भी कर देती है।
हाँ, और इसे महज एक गुजरे जमाने का दस्तावेज समझना तो बिल्कुल भूल होगी। ये हमें सत्ता, दमन और सबसे बढ़कर आज़ादी के सही मतलब को, उसके मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत शक्तिशाली नज़रिया देती है।
फैनन जैसे दिखाते हैं कि गुलामी सिर्फ जंजीरों में नहीं होती है, वो दिमाग में भी घर कर लेती है।
और यही बात इसे आज भी इतनी प्रासंगिक बनाती है। दुनिया भर में आज भी हम देखते हैं ना व्यवस्थागत अन्याय, नस्लवाद के अलग अलग रूप, और वो सारी चुनौतियां जो उपनिवेशवाद के खत्म होने के दशकों बाद भी बनी हुई हैं। फैनन हमें याद दिलाते हैं कि असली आज़ादी सिर्फ राजनैतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं है बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक लड़ाई भी है।
तो इस जरूरी किताब को समझने के लिए चलिए पहले इसके लेखक फ्रांस फैनन को थोड़ा जान लेते हैं। आखिर कौन थे ये शख्स? तो देखिए संक्षेप में, फैनन मार्टिनिक में जन्मे थे। फ्रांसीसी मनोचिकित्सक थे, दार्शनिक, लेखक और एक क्रांतिकारी भी। उनका जीवन ही आप कह सकते हैं एक तरह से उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गया था।
उनका अनुभव और नजरिया वाकई में बहुत अनूठा था। सोचिए जरा, जन्म हुआ एक फ्रांसीसी कॉलोनी में, पढ़ाई लिखाई फ्रांस में की और फिर उन्होंने अल्जीरिया की आज़ादी की लड़ाई में फ्रांस के खिलाफ ही सक्रिय भूमिका निभाई। इससे उन्हें एक अंदरूनी बाहरी मतलब दोनों तरह की समझ मिली। वो व्यवस्था को अंदर से भी जानते थे और बाहर खड़े होकर उसकी चीरफाड़ भी कर सकते थे।
बिल्कुल, और उनके बातों में जो गहराई है ना, उसका एक बड़ा कारण उनका मनोचिकित्सक होना था। उन्होंने अल्जीरिया में काम करते हुए न सिर्फ औपनिवेशिक हिंसा के शिकार लोगों के जख्मों को देखा बल्कि उन फ्रांसीसी सैनिकों का भी इलाज किया जो इस हिंसा का हिस्सा थे। मतलब दोनों तरफ के मानसिक आघात को उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया। इसीलिए द रैचेड ऑफ द अर्थ कोई सिर्फ किताबी सिद्धांत नहीं है, ये उनके क्लिनिकल अनुभवों, जमीनी हकीकत की समझ और क्रांतिकारी जुनून का निचोड़ है। ये किताब 1961 में उनकी दुखद मौत से ठीक पहले छपी और इसे उनकी सबसे महत्वपूर्ण और विस्फोटक रचना माना जाता है।
चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं। इसका मूल सार क्या है, मतलब ये किताब किस बारे में है? देखिए, ये किताब उपनिवेशवाद की क्रूर सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के एकदम बेबाकी से सामने रखती है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताती बल्कि उन लोगों के लिए सच्ची मुक्ति का रास्ता भी सुझाती है। एक तरह से ये औपनिवेशिक व्यवस्था का निदान भी है और उसके इलाज का एक बेहद कड़वा नुस्खा भी।
सही कहा। और ये किताब पाठक को एक सफर पर ले जाती है जो आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। शुरुआत होती है उपनिवेशवाद की नग्न संस्थागत हिंसा के चित्रण से। फिर फैनन उस विवादास्पद तर्क पर आते हैं कि क्यों इस ढांचे को तोड़ने के लिए प्रतिहिंसा जरूरी हो जाती है।
हाँ, वो हिंसा वाला हिस्सा,
हाँ उस पे आएंगे। इसके बाद वो आज़ादी के आंदोलनों की अंदरूनी राजनीति, खासकर शहरी नेतृत्व और ग्रामीण जनता के बीच के तनावों को खंगालते हैं। फिर वो आज़ादी मिलने के बाद आने वाले खतरों से आगाह करते हैं। कैसे एक नया अपना शासक वर्ग पुराने गोरों की ही नकल करने लगता है। और अंत में वो राष्ट्रीय संस्कृति की अहमियत और औपनिवेशिक युद्ध के भयानक मनोवैज्ञानिक असर पर रोशनी डालते हैं।
इसका दायरा बहुत बड़ा है, मतलब ये राजनीति, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और संस्कृति सबको एक धागे में पिरो देती है। फैनन दिखाते हैं कि कैसे उपनिवेशवाद दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है, एक तरफ सभ्य शासक और दूसरी तरफ असभ्य, मतलब लगभग जानवर समझे जाने वाले शासित। ये किताब हमें सतही आज़ादी के धोखे से सावधान करती है और एक सच्चे जन केंद्रित राष्ट्र बनाने के मुश्किल मगर ज़रूरी रास्ते की ओर इशारा करती है। ये सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी उत्पीड़ित मानवता की कहानी लगती है।
हाँ लगती है।
तो आइए अब किताब के कुछ मुख्य विचारों में और गहरे उतरते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत खुद फैनन ने नहीं की, बल्कि मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक जीन पॉल सार्त्र की एक जोरदार प्रस्तावना से होती है।
हाँ, सार्त्र की वो प्रस्तावना अपने आप में बहुत बहुत अहम है। वो सीधे यूरोप के लोगों को संबोधित करते हैं, उन्हें आईना दिखाते हैं कि कैसे वो इस औपनिवेशिक लूट खसोट में चुपचाप भागीदार रहे हैं। सार्त्र लिखते हैं कि भाई, ये किताब तुम्हारे लिए नहीं है, ये उत्पीड़ितों के लिए है, पर इसे पढ़कर तुम्हें अपने दोगलेपन पर शर्म जरूर आएगी। ये प्रस्तावना शुरू में ही माहौल गर्म कर देती है और किताब के तेवर एकदम साफ कर देती है।
बिल्कुल। अब आते हैं पहले अध्याय पर, हिंसा के संबंध में। ये शायद किताब का सबसे ज्यादा चर्चित और हाँ, बहस छेड़ने वाला हिस्सा है। फैनन का तर्क यहाँ थोड़ा चौंका सकता है।
बिल्कुल, चौंका सकता है। फैनन यहाँ ये स्थापित करते हैं कि उपनिवेशवाद कोई बातचीत या समझौते से बनी व्यवस्था नहीं है, इसकी नींव ही हिंसा पर रखी गई है। यह नग्न बल प्रयोग से लागू होता है और उसी से कायम रहता है। उपनिवेशवादी दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है, शासकों का साफ सुथरा रोशनी वाला शहर और शासितों की अंधेरी भीड़ भरी भूखी बस्ती। और इस बंटवारे को बनाए रखने के लिए लगातार हिंसा या फिर हिंसा का डर इस्तेमाल होता है। शासितों को लगातार ये एहसास दिलाया जाता है कि वो कमतर हैं, पिछड़े हैं, जंगली हैं।
तो फैनन का तर्क है कि जो व्यवस्था हिंसा से बनी है उसे सिर्फ हिंसा से ही उखाड़ा जा सकता है। लेकिन वो इससे आगे जाते हैं और यहीं पर वो हिंसा एक सफाई शक्ति, क्लेंजिंग फोर्स वाला विचार आता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या फैनन हिंसा का महिमा मंडन कर रहे थे?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसको समझना भी जरूरी है। फैनन का तर्क खून खराबी का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि वो एक गहरे मतलब मनोवैज्ञानिक बदलाव की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार जिस इंसान या समुदाय को पीढ़ियों से दबाया गया हो, जिसे उसकी अपनी ही नज़र में गिरा दिया गया हो, उसके लिए अत्याचारी के खिलाफ हथियार उठाना सिर्फ एक राजनैतिक कदम नहीं, बल्कि एक मुक्तिदायक अनुभव है।
मुक्तिदायक अनुभव कैसे?
देखिए, यहाँ फैनन का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा से नहीं है। उनके मुताबिक ये एक मनोवैज्ञानिक जलजला है, जहां सालों से दबा हुआ एहसास कि हम कम हैं, वो पलटवार के जरिए हम भी कुछ हैं में बदलता है। ये आत्मसम्मान वापस पाने का एक हिंसक, लेकिन उनकी नज़र में ज़रूरी तरीका है। इससे क्या होता है कि डर और हीन भावना की जो गांठें होती हैं वो खुलती हैं। व्यक्ति निष्क्रिय शिकार होने के बजाय इतिहास का निर्माता बनता है, ऐसा उनका मानना था।
हाँ, ये समझना जरूरी है कि फैनन व्यक्तिगत छिटपुट हिंसा और संगठित सामूहिक मुक्ति संघर्ष की हिंसा में फर्क करते हैं। उनके अनुसार सामूहिक हिंसा लोगों को जोड़ती है और उनकी ऊर्जा को एक साझा राजनीतिक लक्ष्य की तरफ मोड़ती है। तो ये हिंसा के मनोवैज्ञानिक असर पर एक बहुत ही, कह सकते हैं, उत्तेजक तर्क है।
बिल्कुल। हिंसा की इस नींव को समझने के बाद फैनन आंदोलन के अंदरूनी डायनेमिक्स पर ध्यान देते हैं, खासकर अध्याय दो में, जहां वो सहजता की ताकत और कमजोरी की बात करते हैं।
ये भी बड़ा दिलचस्प विश्लेषण है। फैनन कहते हैं कि शहरों में केंद्रित राष्ट्रवादी पार्टियां, जिनका नेतृत्व अक्सर पश्चिमी शिक्षा पाए बुद्धिजीवी करते हैं, वे कई बार जरूरत से ज्यादा सावधान हो जाती हैं। मतलब वो बातचीत, समझौते और सुधारों पर ज्यादा जोर देती हैं और शायद आम जनता, खासकर ग्रामीण किसानों की क्रांतिकारी ऊर्जा से पूरी तरह जुड़ नहीं पाती।
सही। फैनन का मानना है कि असली क्रांतिकारी चिंगारी अक्सर ग्रामीण किसानों में होती है। उन्होंने औपनिवेशिक शोषण को सबसे नजदीक से और सबसे क्रूरता से झेला होता है। उनके पास, जैसा फैनन कहते हैं, खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सब कुछ होता है।
हाँ, ये लाइन बहुत पावरफुल है,
है ना? क्रांति की पहली लहर अक्सर उनके स्वतः स्फूर्त, यानी बिना किसी योजना के किए गए विद्रोहों से उठती है। लेकिन फैनन यहाँ चेतावनी भी देते हैं, ये कच्ची सहज ऊर्जा काफी नहीं है। अगर इसे एक स्पष्ट राजनीतिक दिशा और संगठन न मिले तो ये बिखर सकती है या आसानी से कुचली जा सकती है। तो क्रांतिकारी नेतृत्व की असली चुनौती इसी शहरी समझ और ग्रामीण जोश के बीच एक पुल बनाने की है।
ये तो हुई संघर्ष के दौरान की बात, लेकिन फैनन की दूरदृष्टि वाकई कमाल की है। तीसरे अध्याय में, राष्ट्रीय चेतना के नुकसान में, वो आजादी मिलने के बाद आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। ये पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे वो भविष्य देख रहे थे।
बिल्कुल बिल्कुल। फैनन आगाह करते हैं कि सिर्फ झंडा बदल जाने या गोरे शासकों की जगह काले या भूरे शासकों के आ जाने से सच्ची आजादी नहीं आ जाती। वो एक नए वर्ग के उदय की बात करते हैं, जिसे वो कहते हैं राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग, नेशनल बुर्जुआजी। ये वो स्वदेशी अभिजात वर्ग है जो आजादी के बाद सत्ता संभालता है।
और फैनन के अनुसार ये नया वर्ग अक्सर पुराने औपनिवेशिक शासकों की ही बुरी नकल बन जाता है ना?
हाँ, बिल्कुल। उनमें अपने यूरोपीय समकक्षों जैसी उद्यमशीलता या देश बनाने की दूरदृष्टि नहीं होती। ये नया वर्ग असल में उत्पादन या उद्योग बढ़ाने के बजाय अक्सर विदेशी कंपनियों के एजेंट या बिचौलिया बनकर रह जाता है, देश के संसाधनों को पुराने मालिकों के फायदे के लिए ही इस्तेमाल होने देता है। इसी को बाद में नव उपनिवेशवाद यानी नियो कॉलोनियलिज्म कहा गया।
अच्छा।
और अपनी नाकामियों को छिपाने और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए ये वर्ग अक्सर क्या करता है? फैनन के अनुसार ये राष्ट्रवाद के नारे तो खूब लगाता है, लेकिन पीछे से जातीय, कबाइली या क्षेत्रीय भावनाओं को हवा देता रहता है, ताकि लोग आपस में ही लड़ते रहें और असल मुद्दों से ध्यान भटक जाएं। फैनन कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय चेतना सिर्फ अतीत का गौरवगान करने या विदेशी दुश्मन का डर दिखाने तक सीमित रह जाए तो ये सच्ची तरक्की का रास्ता नहीं है। सच्ची राष्ट्रीय चेतना को सामाजिक और राजनैतिक चेतना में बदलना होगा, जिसका मतलब है पूरे समाज को बराबरी और न्याय के आधार पर मौलिक रूप से बदलना।
ये बात तो एकदम सोचने वाली है कि आज़ादी मिलने के बाद भी क्या सच में व्यवस्था बदलती है या सिर्फ चेहरे बदलते हैं। फैनन की ये चेतावनी आज भी कितनी सटीक लगती है कई जगहों पर, है ना?
बहुत सटीक।
अब चौथे अध्याय पर आते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति पर। यहाँ फैनन संस्कृति की भूमिका पर बात करते हैं।
हाँ, और ये भी बहुत जरूरी है। फैनन तर्क देते हैं कि उपनिवेशवाद सिर्फ जमीन और संसाधन ही नहीं लूटता, वो लोगों की संस्कृति, उनके इतिहास और उनकी पहचान को भी तोड़ने की कोशिश करता है। वो स्थानीय संस्कृति को पिछड़ा और असभ्य बताकर लोगों में हीन भावना भरता है। इसके जवाब में उपनिवेशित बुद्धिजीवी अक्सर या तो पूरी तरह पश्चिमी संस्कृति की नकल करने लगता है या फिर अपने पुराने भूले बिसरे अतीत का जरूरत से ज्यादा महिमा मंडन करने लगता है।
फैनन कहते हैं कि ये दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। सच्ची राष्ट्रीय संस्कृति किसी म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, ना ही वो सिर्फ अतीत की कहानियों में मिलती है। उनके अनुसार सच्ची और जीवंत राष्ट्रीय संस्कृति वर्तमान में बनती है, आज़ादी के लिए चल रहे संघर्ष की आग में तपकर बनती है। ये एक लड़ती हुई संस्कृति है जो भविष्य की ओर देखती है, जो लोगों को एकजुट करती है और उन्हें एक नए समाज का सपना दिखाती है। कलाकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि इस लड़ाई का हिस्सा बनना है।
बिल्कुल सही। और फिर आता है पांचवा और आखिरी अध्याय, औपनिवेशिक युद्ध और मानसिक विकार। यहाँ मनोचिकित्सक फैनन पूरी तरह सामने आते हैं। ये अध्याय पढ़ना शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें अल्जीरिया युद्ध के दौरान उनके देखे हुए मानसिक रोगियों की केस स्टडीज हैं। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि इंसानी त्रासदी के आंखों देखे हाल हैं।
हाँ, मैंने पढ़ा है इसे। ये वाकई बहुत विचलित करने वाला है। वो बताते हैं कि कैसे औपनिवेशिक हिंसा सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी कितने गहरे जख्म छोड़ती है। वो उन अल्जीरियाई लोगों के बारे में लिखते हैं जो यातना सहने या अपने परिवार पर हुए अत्याचार देखने के बाद गंभीर डिप्रेशन, एंग्जाइटी या साइकोसिस का शिकार हो गए।
हाँ, लेकिन वो यही नहीं रुकते। वो उन फ्रांसीसी सैनिकों और पुलिस वालों के केस भी बताते हैं जो खुद यातना देने वाले थे और बाद में अपराध बोध, पागलपन के दौरे या नैतिक पतन का शिकार हुए। एक केस तो ऐसा है जहां एक यूरोपीय पुलिस ऑफिसर जो संदिग्धों पर जुल्म करता था, बाद में घर जाकर अपनी बीवी बच्चों को भी मारने पीटने लगा था।
हे भगवान!
इन दर्दनाक उदाहरणों से फैनन अपने मूल तर्क को साबित करते हैं। उपनिवेशवाद एक जहरीली व्यवस्था है जो पूरे समाज को बीमार बना देती है। यह सिर्फ उत्पीड़ितों को ही नहीं तोड़ती बल्कि अत्याचारियों को भी अंदर से खोखला कर देती है, उन्हें अमानवीय बना देती है। ये मानसिक बीमारियों की जड़ है।
और किताब का अंत एक शक्तिशाली आह्वान के साथ होता है। फैनन नए आजाद हुए देशों, जिन्हें वो तीसरी दुनिया कहते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वे यूरोप के रास्ते पर न चलें। उनका मानना है कि यूरोप अपने उपनिवेशवाद और पाखंड के इतिहास के साथ नैतिक रूप से दिवालिया हो चुका है।
हाँ, वो साफ कहते हैं कि यूरोप की नकल करना क्रांति के साथ धोखा होगा। इसके बजाय धरती के अभागों यानी रेस्ट ऑफ द अर्थ के पास मौका भी है और जिम्मेदारी भी कि वो इंसानियत का एक नया अध्याय लिखें, एक नया मनुष्य गढ़ें, समाज के नए मॉडल बनाएं जो ज्यादा न्यायपूर्ण और सच्चे हों। ये लड़ाई सिर्फ एक देश की आज़ादी की नहीं बल्कि पूरी मानवता के भविष्य की लड़ाई है।
वाह, क्या जबरदस्त अंत है!
तो इस पूरी गहरी और कई बार विचलित करने वाली चर्चा से कुछ मुख्य बातें या सूत्र क्या निकलते हैं? मेरे ख्याल से पहला तो है उपनिवेशवाद का मनोविज्ञान, कैसे ये लोगों के अंदर उनकी अपनी हीनता का जहर भर देता है।
हाँ।
दूसरा, फैनन के तर्क के अनुसार
हिंसा की भूमिका सिर्फ राजनीतिक तख्तापलट के लिए नहीं बल्कि उस जहर को साफ करने और खोया हुआ आत्मसम्मान वापस पाने के एक मनोवैज्ञानिक साधन के रूप में।
तीसरा वो नव उपनिवेशवाद का छिपा हुआ खतरा कि आज़ादी के बाद भी शोषण का तंत्र कैसे जारी रह सकता है जब एक नया अभिजात वर्ग पुराने शासकों की जगह ले लेता है पर उनकी नीतियां अपनाता है।
बिल्कुल। चौथा, किसानों और हाशिए पर पड़े समुदायों की अनदेखी की गई क्रांतिकारी क्षमता। और पांचवां, संस्कृति की लड़ाई, अपनी पहचान को दोबारा गढ़ना और अतीत की गुलामी से मुक्त होकर भविष्य की ओर देखना क्यों जरूरी है।
इन विषयों पर अगर आज के संदर्भ में सोचें तो फैनन की बातें एकदम गूंजती हुई सी लगती हैं।
हाँ।
भारत में भी हम देखती हैं कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला भेदभाव, चाहे वो जाति पर आधारित हो या धर्म पर या क्षेत्र पर, लोगों के आत्मविश्वास और उनकी संभावनाओं पर कितना गहरा असर डाल सकता है। फैनन हमें याद दिलाते हैं कि इस थोपी गई हीन भावना को नकारना और सामूहिक स्वाभिमान जगाना किसी भी सामाजिक बदलाव की लड़ाई का एक बेहद अहम हिस्सा है।
हाँ बिल्कुल, और ये हमें आज के नेताओं और सत्ता के ढांचों को भी आलोचनात्मक नज़र से देखने की प्रेरणा देता है। क्या नीतियाँ वाकई आम आदमी के लिए बन रही हैं, या कहीं सत्ता कुछ खास लोगों के हाथ में सिमट कर तो नहीं रह गई है जो शायद बाहरी ताकतों के इशारों पर काम कर रहे हों। फैनन की बातें हमें समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों की आवाज़ सुनने और उनकी ताकत को पहचानने के लिए भी कहती हैं।
सही बात। और हाँ, मानसिक स्वास्थ्य को सिर्फ व्यक्तिगत समस्या ना मानकर उसे सामाजिक और राजनीतिक अन्याय से जोड़कर देखना भी फैनन की एक बड़ी देन है।
हाँ, वो बहुत जरूरी है।
किताब में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं।
हाँ।
वो सीधे दिलो दिमाग पर असर करती हैं ना?
हाँ, बहुत सी हैं। कुछ विचारों को दोहराना जरूरी है उनके पीछे छुपे अर्थ के साथ। जैसे फैनन का कहना कि उपनिवेशवाद का अंत हमेशा एक हिंसक घटना होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिंसा के पुजारी थे, बल्कि वो ये बता रहे थे कि ये व्यवस्था इतनी गहरी और क्रूर है कि ये शांतिपूर्ण अपीलों या छोटे मोटे सुधारों से जाने वाली नहीं है, इसे उखाड़ फेंकना ही होगा।
और वो विचार कि संक्षेप में, उपनिवेशित के लिए हिंसा एक सफाई शक्ति है, यह उसे हीनता ग्रंथि से मुक्त करती है, निडर बनाती है और आत्मसम्मान लौटाती है। ये बार बार उस मनोवैज्ञानिक कायापलट पर जोर देता है जिसे फैनन मुक्ति की प्रक्रिया का केंद्र मानते थे। यह आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है।
सही। एक और शक्तिशाली बाइबल का सा लगने वाला विचार है, अंतिम पहले होंगे और पहले अंतिम। ये सिर्फ शासक बदलने की बात नहीं है, ये पूरी सामाजिक और सत्ता की संरचना को जड़ से उलटने का आह्वान है। ये क्रांति का प्रतीक है।
और आखिर में वो यादगार पुकार, आओ साथियों, यूरोपीय खेल खत्म हो गया है, हमें कुछ अलग खोजना होगा। मानव जाति एक नए सिद्धांत की प्रतीक्षा कर रही है, हमें यूरोप की नकल नहीं करनी चाहिए, ये अपनी राह खुद बनाने, मौलिक सोचने और दुनिया के लिए नए बेहतर रास्ते बनाने का एक जोरदार निमंत्रण है।
बिल्कुल, एक नया रास्ता। तो कुल मिलाकर आज के दौर में फैनन के ये विचार हमें क्या सिखाते हैं, हम इन्हें अपने आसपास की दुनिया को समझने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, कई स्तरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, किसी भी तरह के व्यवस्थागत अन्याय, चाहे वो नस्लवाद हो, जातिवाद हो या लैंगिक भेदभाव को सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं बल्कि उसके गहरे मनोवैज्ञानिक असर के साथ समझना, ये जानना कि कैसे ये सिस्टम लोगों को अंदर से तोड़ते हैं। दूसरा, किसी भी बदलाव की लड़ाई में अंदरूनी मनोवैज्ञानिक संघर्ष की अहमियत को पहचानना, अपने मन से डर और हीन भावना को निकालना और सामूहिक आत्मविश्वास पैदा करना। तीसरा, अपने नेताओं, अपनी सरकारों और वैश्विक ताकतों की नीतियों का लगातार आलोचनात्मक मूल्यांकन करते रहना, सवाल पूछना कि क्या ये नीतियां वाकई सबके हित में हैं या ये किसी न किसी रूप में पुराने शोषण के तंत्र को ही बनाए रख रही हैं।
हाँ, ये सवाल जरूरी हैं। चौथा, समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज को सुनना, उनकी ताकत को पहचानना और उन्हें सशक्त बनाने के प्रयासों का समर्थन करना।
और पांचवा,
जैसा आपने भी कहा, मानसिक स्वास्थ्य को एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक चश्मे से देखना, ये समझना कि गरीबी, भेदभाव, हिंसा और अन्याय लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। फैनन हमें याद दिलाते हैं कि कई बार व्यक्तिगत दुख समाज की बड़ी बीमारी का लक्षण होता है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो शायद ये है कि सच्ची आज़ादी सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करना या झंडा बदल लेना नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। ये एक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पुनर्जन्म है। अपनी छीनी हुई इंसानियत को, अपनी गरिमा को वापस पाना ही शायद असली क्रांति है।
मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस किताब का स्थायी महत्व शायद इसी बात में है कि यह हमें असहज करने वाले सच बताती है। यह हिंसा और मनोविज्ञान के पेचीदा रिश्ते पर एक बेबाक टिप्पणी है। यह आज़ादी के बाद आने वाले खतरों, खासकर भ्रष्ट और नकलची नेतृत्व के बारे में हमें पहले ही चेता देती है। और सबसे बढ़कर ये दुनिया भर के उन लोगों को जिन्हें इतिहास ने रौंदा है, ये हौसला देती है कि वो अपनी कहानी खुद लिखें, किसी की नकल करने के बजाय कुछ नया और मौलिक रचें। इसे पढ़ना एक चुनौती हो सकता है, पर ये एक बेहद जरूरी सबक है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।